आकांक्षा एक हॉस्पिटल के अंदर इधर से उधर दौड़ रही थी। पूरे हॉस्पिटल में उसके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। वो हर एक कमरे को खोलकर देख रही थी, जहां पर हर बेड पर लाशें रखी हुई थीं। घबराते हुए आकांक्षा वहां से दौड़कर सामने के कमरे में गई। वहां जाकर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने जो हो रहा था उसे देखकर वो सन रह गई। बेड पर राजवीर जी किसी के कंधे पर सिर लटकाए पड़े थे। उनका शरीर शिथिल पड़ा था। आकांक्षा उन्हें इस हालत में देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। जैसे तैसे हिम्मत करके वो उनकी तरफ बढ़ी तो आगे जाकर उसने देखा कि राजवीर जी जिसके कंधे पर सर रख कर लेटे थे वो कोई और नहीं बल्कि रिवांश था, और वो उनकी गर्दन पर अपने दांत लगाकर उनका खून पी रहा था। उस घटना को देखकर आकांक्षा बुरी तरह घबरा गई और चिल्लाते हुए खड़ी हुई। जैसे ही वो हड़बड़ाकर खड़ी हुई, उसके माथे पर पड़ी रिवांश की तस्वीर उड़कर दूर चली गई। थैंक गॉड, ये एक सपना था, आकांक्षा ने हाँफते हुए अपना पसीना पोंछा। बाहर इतनी ठंड होने के बावजूद वो डर के मारे पसीने से तरबतर हो गई थी। आकांक्षा ने अपना हाथ बढ़ाकर लैंप की लाइट ऑन की तो उसकी नज़र जाह्नवी पर पड़ी, जो कि बहुत आराम से सो रही थी। इसे तो देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। लगता है सोने से पहले मैंने और जाह्नवी ने कुछ ज़्यादा ही वैम्पायर्स की बातें कर ली थी, इसी वजह से मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। ऊपर से रिवांश, वो एक वैम्पायर होने की वजह से सपने में भी मुझे वही दिखाई दे रहा था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मुझे बिना कुछ भी दिखता रहता है, और सपने कौन से सच होते हैं? आकांक्षा उस सपने से खुद का ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आकांक्षा ने अपने पास रखा पानी पिया और आंखें बंद करके फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई थी। गुफाओं के आगे से वापस लौटने के बाद रिवांश हताश होकर किसी पेड़ के नीचे बैठा था। उसके अंदर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान भी था। अगर हमें पाताल में जाने का रास्ता मिल जाता तो हम सच का पता लगा लेते। आकांक्षा, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। भले ही हमारा साथ ज़्यादा वक्त का ना रहा हो, लेकिन जितने भी समय के लिए हम दोनों साथ थे वो हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन समय था। पता नहीं कल दिन कैसे बीतेगा। अब तो आपके बिना इस जंगल में भी हमारा दिल नहीं लग रहा, जो एक समय में हमारा घर हुआ करता था। रिवांश खुद से बैठकर बातें कर रहा था कि तभी उसे किसी की गंध महसूस हुई। ये तो किसी इंसान की बू है। रिवांश उस गंध का पीछा करते हुए वहां पहुंचने लगा था कि अचानक उसने अपने कदम वहीं रोक लिए। नहीं, हमने आकांक्षा से वादा किया था कि हम किसी इंसान का खून नहीं पिएंगे। पहली बार उन्होंने हमसे से कुछ मांगा था, और हम उनकी इच्छाओं का मान न रखें ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। रिवांश फिर से वहीं पर बैठ गया, लेकिन वो इंसानी गंध बढ़ती जा रही थी, जो कि उसकी बर्दाश्त के बाहर थी। अब उसका खुद पर काबू कर पाना नामुमकिन सा होने लगा। हमें कुछ करना होगा। अब ये बू हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। रिवांश आकांक्षा को दिए वादे को निभाने के लिए अगले ही पल वहां से दौड़कर विपरीत दिशा में भागने लगा। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक उसे वो गंध आना बंद नहीं हुई। उसके वहां से जाते ही वो इंसान जिसकी बू रिवांश को परेशान कर रही थी, अचानक उसने रूप परिवर्तित किया और वहां से गायब हो गया। अगली सुबह राजवीर जी के घर से किचन में बर्तनों की खड़खड़ाहट के साथ उनके बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। इन दोनों लड़कियों को जरा सी भी चिंता नहीं है। 9 बजने को आ गए लेकिन अभी तक घोड़े बेचकर सो रही हैं। इतने दिनों से कॉलेज भी नहीं गई, लेकिन पढ़ाई से इनका क्या लेना देना है। इन्हें तो पिशाचों पर रिसर्च करनी है। उठने दो दोनों को, फिर अच्छे से क्लास लगाता हूँ। राजवीर जी नाश्ता बनाना छोड़ उन दोनों को जगाने के लिए आकांक्षा के कमरे की तरफ बढ़े। कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने जोर से कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अक्षु, जाह्नवी, अब क्या पूरे दिन सोने का इरादा है? पढ़ाई वढ़ाई करनी भी है या नहीं? जल्दी बाहर आओ दोनों। दरवाजे की आवाज़ सुनकर आकांक्षा ने नींद में जाह्नवी को कोहनी मारी और कहा, जाह्नवी, ए जाह्नवी, चल उठ, दादू बाहर है, जाकर दरवाज़ा खोल। मुझे नहीं पता यार, मैं आज अपने घर वापस जा रही हूँ, तेरे दादू तो चैन से सोने तक नहीं देते। ठीक है, तो अभी चली जा, और हाँ, जाते हुए दरवाज़ा खोल देना। आकांक्षा अधखुली आंखों से बड़बड़ाई। क्या होगा तुम आज की जनरेशन का, ना सोने का कुछ पता है और ना ही उठने का ठिकाना। अरे बड़े बूढ़े कहते थे, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। 5 मिनट में दोनों बाहर नहीं आई तो पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। राजवीर ने आखिरी चेतावनी दी और वहां से वापस किचन में चले गए। उनके जाने के बाद जैसे तैसे आकांक्षा उठी और उसने जाह्नवी को भी जगाया। आकांक्षा उठते ही अपनी बनाई रिवांश की तस्वीर को निहाल रही थी, जबकि जाह्नवी अपने लंबे बालों को बांधने में लगी थी। जाह्नवी अपने बालों को बांधते हुए बोली, वैसे कुछ गलत भी तो नहीं कहा दादू ने, इतने दिन से हमने कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी। आज तो हम कैसे भी करके क्लास अटेंड करके ही रहेंगे। और हमारी पहली क्लास कितने बजे होती है? आकांक्षा रिवांश की तस्वीर को एक तरफ रखकर पूछा। 10 बजे। जंगल में जाकर के इतना भी भूल गई? जाह्नवी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन तेरा ही दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आकांक्षा ने बेड साइड पर रखी घड़ी को उठाया और जाह्नवी के सामने कर दी। 9:30 बज रहे हैं। जब तक हम रेडी होकर कॉलेज जाएंगे तब तक आराम से 11:30 बज जाएंगे, और हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास सबसे पहले होती है। मुझे नहीं लगता कि हम आज की क्लास ले पाएंगे। उसकी बात सुनकर जाह्नवी का मुंह फिर से बन गया। अब तो क्या ही कर सकते हैं, फिर भी यार आई वॉन्ट टू रिलैक्स, थोड़ी देर कॉलेज हो आते हैं, घूमना फिरना भी हो जाएगा। पिछले एक हफ्ते में इतना कुछ हो गया कि बस अब थोड़ा आराम चाहिए। आकांक्षा उसकी बात का कुछ जवाब देती उससे पहले उनके कानों में राजवीर जी की आवाज आई, अक्षु और जाह्नवी, बहुत हो गया तुम दोनों। तुम दोनों बाहर आ रही हो या नहीं? उनकी आवाज सुनकर दोनों झट से बाहर दौड़ कर गईं। उन दोनों को बाहर देखकर राजवीर ने गुस्से भरी निगाहों से उन्हें देखा और कहा, ओ तो सुबह हो गई तुम दोनों की। हाँ दादू, सॉरी, आज आपको ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा, आकांक्षा ने धीमी आवाज में कहा। राजवीर जी, हाँ, और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पसंद तुम अपनी पढ़ाई को लेकर कॉम्प्रोमाइज करो। अब जल्दी से दोनों तैयार होकर कॉलेज जाओ और अपनी बाकी की क्लासेस अटेंड करो। कल संडे है तो कॉलेज बंद रहेगा। आकांक्षा, हम लोग राजपुरोहित जी से मिलने कांगड़ा चलेंगे। जाह्नवी, तुम्हें भी चलना है? जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाया। राजवीर जी नाश्ता करने के बाद अपने काम पर चले गए। रिटायरमेंट के बाद वो अपना मन बहलाने के लिए पास की एक छोटी सी फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। उनके जाने के बाद आकांक्षा और जाह्नवी जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गईं। वहां क्लासेस अटेंड करने के बाद दोनों कैंपस में बैठकर बातें कर रही थीं। लो फिर से एक और नया असाइनमेंट मिल गया, इससे अच्छा कॉलेज आते ही नहीं, फिर कम से कम ये बहाना तो होता कि हम एबसेंट थे, जाह्नवी ने लॉन में पड़ी एक बेंच पर बैठते हुए कहा। ये सब लगा ही रहेगा, तो चाहे क्लासेस अटेंड या ना कर, आकांक्षा ने जवाब दिया। अच्छा, अपने बैग में देख, कुछ खाने को है तो मुझे देना। जाह्नवी अपना बैग टटोलने लगी। उसने बैग से चिप्स के पैकेट्स निकाले और आकांक्षा को पकड़ा दिए। जिंदगी भी ना बिल्कुल ईयरपीस की तरह हो गई है, कितना भी सुलझा लो फिर भी उलझ ही जाती है। जाह्नवी ने बैग से ईयरपीस निकालते हुए कहा, जो कि बुरी तरह उलझे हुए थे। तो और तेरे ये सिली एग्जांपल्स, उसकी बात सुनकर आकांक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जाह्नवी के साथ होते हुए भी उसे बार बार रिवांश की याद आ रही थी, इस वजह से वो थोड़ी उदास थी। उसकी ये उदासी उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी।
अच्छा अक्षु, तुझे तेरे हीरो की याद नहीं आ रही? जाह्नवी ने आकांक्षा को खोए हुए देखकर पूछा। और तू उससे बात कैसे करेगी, उसके पास मोबाइल तो होगा नहीं ना? मोबाइल तो फिर भी मैं गिफ्ट कर दूं, लेकिन जंगलों में उसके लिए टॉवर कहाँ से लगाऊं? लेकिन इन सब के बावजूद उसने मुझे रोज मिलने का वादा किया है। उसने बोला था जब भी मैं आंख बंद करके उसे दिल से याद करूंगी वो अगले ही पल मेरे सामने होगा, आकांक्षा ने धीरे से कहा ताकि उसकी बात कोई सुन ना ले। वो तो पढ़ा लिखा है, उसे बोलना आगे की पढ़ाई के लिए हमारे कॉलेज में एडमिशन ले ले, उसके बाद इन सबका झंझट ही खत्म। नहीं यार, वो डायरेक्ट धूप के कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकता, छोड़ दो इन उल्टे सीधे आइडियाज को, वैसे भी वो रात को मिलने आ ही जाएगा, आकांक्षा ने उठते हुए बोला। चल अब घर चलते हैं। जाह्नवी उसके साथ चलते हुए बोली, अक्षु तू अपने हीरो से मुझे मिलवाएगी? हाँ क्यों नहीं, आकांक्षा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आकांक्षा और जाह्नवी चलते हुए बात कर रही थी कि तभी आकांक्षा सामने बाइक पर आ रहे एक लड़के से टकरा गई। टकराते ही वो नीचे गई। लड़के ने जल्दी से बाइक रोकी और उसे संभालने के लिए आगे आया। वो कुछ कहता इससे पहले जाह्नवी गुस्से से उस पर बिफर पड़ी। त्रिशान, आर यू ब्लाइंड? सामने से आ रही लड़की नहीं दिखाई दी तुम्हें? बाइक पर आ रहा लड़का उन्हीं का क्लासमेट त्रिशान था और जानबूझकर आकांक्षा को टक्कर नहीं मारी थी। छोड़ ना जाह्नवी, और वैसे भी मुझे चोट नहीं लगी, आकांक्षा उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन पैर में चोट लगने के कारण वो उठ नहीं पा रही थी। त्रिशान ने अपना हाथ बढ़ाकर फिर बोला, आकांक्षा चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें चोट लगी है। पहले तो खुद ही टक्कर मारी और अब मदद का झूठा दिखावा, तुम जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, जाह्नवी ने गुस्से से कहा तो त्रिशान का मुंह उतर गया। इट्स ओके त्रिशान, तुम जाह्नवी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, आई एम फाइन। आकांक्षा जैसे तैसे खड़ी हो गई लेकिन फिर भी उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। जिद मत करो आकांक्षा, जब तक तुम डॉक्टर के पास नहीं चलोगी मुझे यही लगेगा, त्रिशान की जिद करने पर आकांक्षा और जाह्नवी उसके साथ जाना ही पड़ा। जाह्नवी और त्रिशान ने आकांक्षा को पकड़कर बाइक पर बिठाया। बाइक पर बैठते ही आकांक्षा ने जैसे ही बैलेंस करने के लिए त्रिशान के कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखें बंद होने लगी और फिर से उसे कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। रात के समय त्रिशान अपनी बाइक पर कहीं जा रहा था और अचानक से सामने आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। कार के टक्कर मारते ही वो उछलकर कहीं दूर जा गिरा। उसके गिरते ही आकांक्षा जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाते ही त्रिशान ने बाइक वहीं रोक दी। क्या हुआ आकांक्षा, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है क्या, उसने पूछा। नहीं, लेकिन तुम बाइक सही से चलाना, कहीं फिर से गिराना दो, आकांक्षा ने हड़बड़ाते हुए कहा। ये अक्षु बीना जब से जंगल से वापस आई है उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, पता नहीं रिवांश से मिलकर इसे हो क्या गया है, भगवान जी प्लीज अब कोई नई मुसीबत मत खड़ी कर दीजिएगा, जाह्नवी ने अपने मन में सोचा। कुछ देर बाद वो तीनों हॉस्पिटल पहुंचे जहां डॉक्टर ने आकांक्षा का पैर देखते हुए कहा, आपके पैर का गिरने की वजह से मुड़ गया है, एक तो दिन क्रेप बैंडेज बांध कर रखिएगा और कुछ पेन किलर्स ले लीजिएगा, दो दिन में आराम मिल जाएगा। चेकअप के बाद त्रिशान ने उन दोनों को आकांक्षा के घर ड्रॉप कर दिया।
घर पर आते ही आकांक्षा आराम करने चली गई, जबकि जाह्नवी राजवीर जी के साथ डिनर बना रही थी। दोनों ने आकांक्षा को बेड पर से उठने से सख्त मना किया था, हालांकि वो वहां पर बैठे बैठे ऊब रही थी। उसके बावजूद उसके पास उन दोनों की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। डिनर के बाद हमेशा की तरह राजवीर जी थोड़ी देर वॉक करने के बाद सोने चले गए और जाह्नवी भी थके होने के कारण से जल्दी ही सोने जा चुकी थी। इन सब के बीच आकांक्षा की आंखों से नींद गायब थी। नींद न आने की वजह से वो अपने कमरे से बाहर लॉन में आ गई। तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे मिलने आओगे लीवांश, लेकिन तुम नहीं आए ना। तुमने तो कहा था कि अगर मैंने तुम्हें दिल से याद किया तो अगले ही पल तुम मेरी आंखों के सामने होवोगे। पूरे दिन से मेरे दिल से तुम्हारे ख्याल से जा ही नहीं रहे, लेकिन तुम्हें तो एहसास तक नहीं कि मैं तुम्हें कितना याद कर रही हूँ, आकांक्षा ने चांद की तरफ देखकर कहा। वो लॉन में खड़े होकर नम आंखों से चांद को देखकर रिवांश को याद कर रही थी कि तभी अचानक किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में लिया। किसी के इस तरह पकड़ने की वजह से वो चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। क्रमशः